मैं माँ होने का फ़र्ज़ निभाते हुए इतना कुछ करती हूँ उसके लिए। थोड़ी मेहनत उसकी दादी भी कर लेगी, उस पर तो आगे बताने को होगा कि उसकी दादी कितना प्यार करती है उससे। उन्होंने ही अपने पासा उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया था और बड़ी ही चालाकी से उन्हें अपनी बातों में फंसा भी लिया था। अंतरा का पलड़ा भारी पड़ते देखकर रूपाली जी ने बात बदलने में ही अपनी भलाई समझी। जब से आई हो बस बकवास ही कर रही हो, कुछ कामधाम भी कर लो। जैसी कैंची जैसी तेज अपनी जुबान चलाती हो, उतने तेज अगर हाथ पैर चलाओ तो कुछ भला हो। पहले ही इतनी देर हो भी है, इतना ही बता दो कि आज के समय में हमें चाय नसीब होगी भी या नहीं। रूपाली जी ने तलख लहजे में अंतरा से सवाल किया और साथ ही उसे ताना भी मारा। उनकी बात सुनकर अंतरा खींच उठी। हम कौन सा गैस सिलेंडर उठाकर अपने कमरे में रखाए थे जो खुद से अपने लिए चाय भी नहीं बनाई? जब हम नहीं थीं तब करती थी ना खुद से काम, पर अब बहू के रूप में मुफ्त की नौकरानी घर आ गई है तो एक ग्लास भी नहीं हिलता आपसे। उस पर भाषण ऐसे सुनाती हैं जैसे खुद दिन रात काम ही करती रहती हैं। हमें छोड़िए, हम तो हैं ही पैदाइशी कामचोर, पर खुद तो थोड़ा हाथ पैर हिला लिया कीजिए कि सब काम बहू का ही लिखा है। और सास के फ़र्ज़ बस बैठकर सोफ़ा तोड़ना, ठूंस ठूंस कर खाना, उसमें कीड़े निकालना और बहू का जीना हराम करना ही होता है। अंतरा ने उन्हें आड़े हाथों लिया और चमकती हुए वहां से जाने लगी, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो वापस रूपाली जी की ओर पलट गई। देखो सासुमा, आज पहली और आखिरी बार बता रही हूँ, अच्छे से समझ लो और दिमाग में बिठा लो कि जब हमारा मन होगा हम तभी काम करेंगे, जैसे मन होगा वैसे करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। और हमसे ज्यादा चूं चपड़ की या हमें सताने और हम पर रौब जमाने की कोशिश की तो इस उम्र में सारे घर का काम खुद से करती नजर आओगी, और जो हमारा दिमाग फिर गया तो तुम इस घर से बाहर जाती नजर आओगी और कोई हमें रोक भी नहीं पाएगा। अंतरा ने खुली धमकी दी और मुंह ऐंठते हुए रसोई में चली गई। सीढ़ियों के पास खड़ा अन्वय इस पूरे ड्रामे को देखकर मुस्कुराते हुए वापस कमरे में चला गया। रूपाली जी बस गुस्से में अपना खून फूंकती रह गईं। कितना ही अंतरा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती थीं, पर अंतरा हर बार उन पर हावी हो जाती थी, उनका मुंह बंद कर देती थी और रूपाली जी सिवाय मन ही मन कुढ़ने के और कुछ नहीं कर पाती थीं। इस घर पर अब उसका राज चलने लगा था। उनके बनाए एक एक नियम को मज़े से तोड़ती, हर बार उन्हें चैलेंज करती। अहाना जैसे सुबह सुबह नहीं उठती थी, 7-8 बजे तक आराम से उठती, जिसकी एक वजह अयान भी था। अभिजीत जी तो अब घर पर ही रहते थे तो देर से चाय मिलने पर भी शिकायत नहीं करते थे। रूपाली जी को शुरू में बनाने कह देते थे, पर वो 4 बातें उन्हें सुनाती और 8 अंतरा को कि वही ऐसी बहू लेकर आए हैं तो जाकर अब उसी से कहें। उसके बाद से उन्होंने उनको कहना ही छोड़ दिया। मेट बाकी के काम कर देती थी, अंतरा नाश्ता बना देती थी। अब जहां पहले सबकी पसंद का नाश्ता बनता था, अब अंतरा सबके लिए एक सा नाश्ता बना देती थी। जब तक वो इधर के काम निपटाती, अयान जाग जाता। उसकी मालिश वगैरह करके उसे अभिजीत जी को थमाकर वो बाकी के कामों में लगती। जब तक वो नहा धोकर खाना खाती, दोनों दादा पोते मस्ती में लगे रहते और उन्हें देखकर रूपाली जी चिढ़ती रहती। उस पर अभिजीत जी को सुनाने से भी पास नहीं आती थी, पर अभिजीत जी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते। अयान के रूप में उनकी जिंदगी में आए बदलाव के अनुसार सब ढलने लगे थे, बस रूपाली जी का स्वभाव आज भी नहीं बदला था। हर बार मुँह की खाकर भी उनका गुरूर नहीं टूटता था। अयान और अंतरा के आने से सहगल निवास में एक बार फिर रौनक रहने लगी थी, पर रूपाली जी के कारण इस परिवार ने जो खोया उसका एहसास उन्हें हर शख्स दिलाता था। आज भी सब नाश्ता करने बैठे थे। रूपाली जी नाश्ता देखकर उसे सुनाने ही लगी थी कि तभी अंतरा ने उनसे सवाल कर लिया, सासू माँ, आपकी बहन ने बुलाया था ना, कब जा रही हैं आप? अंतरा ने बात का रुख ही मोड़ दिया था, जिससे रूपाली जी चिढ़ उठी, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही अन्वय ने टोस्ट खाते हुए जवाब दे दिया, आज छोड़ने जाने वाला हूँ मम्मी को और शादी होने तक वो वहीं रहेंगी, पर हमारे पीछे अगर तुमने हमारे घर में गड़बड़ की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। गुस्से भरी निगाहों से अंतरा को घूरते हुए रूपाली जी ने उसे धमकाया, जिस पर अंतरा ने तिरछी नजरों से उन्हें घूरा और चिढ़ते हुए बड़बड़ाने लगी, आपसे बुरा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई हो भी नहीं सकता, कुछ कहा तुमने? अंतरा को बड़बड़ाते देखकर रूपाली जी तीखी निगाहों से उसे घूरने लगी। अंतरा ने शैतानी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए सहमति में सर हिला दिया, हाँ मैं कह रही थी कि अब ये मेरा ही घर है, आपका बुढ़ापा आ गया है, कौन जाने कब आपका बुलावा आ जाए, आपके बाद तो वैसे भी सब मुझे ही देखना है, तो अभी से ही मैं इस घर की सब जिम्मेदारियां संभाल लूंगी, आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए और निश्चिंत होकर आराम से 2-4 महीने अपनी बहन के साथ बिताइए, यहाँ मैं हूँ सब देखने के लिए। अंतरा ने जानकर ऐसी बात कही कि रूपाली जी सर से लेकर पैर तक जल उठी, गुस्से से उनका खून खौल उठा। तुम हमारे मरने की कामना कर रही हो? गुस्से से वो चीख पड़ी और अंतरा ने झट से इनकार में सर हिलाते हुए सौम्य स्वर में जवाब दिया, अरे नहीं सासू माँ, आप तो गलत समझ रही हैं, हम जानते हैं इतनी जल्दी भगवान आपको नहीं बुलाने वाले, वो अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, आप तो 200-400 साल ऐसे ही धरती का बोझ बढ़ाती रहेंगी, मैंने तो बस एक संभावना बताई थी कि कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो उसके बाद तो सब मुझे ही संभालना है, तो अभी से ही मैं सब जिम्मेदारियां उठा लेती हूँ और आपको हर जिम्मेदारी से आज़ाद कर देती हूँ। मीठी छुरी थी वो, क्या हलाल किया था उसने रूपाली जी को। गुस्से से तिलमिलाई वो खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई और जलती निगाहों से उसे घूरते हुए वहां से चली गई। उनके जाते ही अंतरा ने अन्वय को देखा और दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। अभिजीत जी भी हौले से मुस्कुरा दिए। सुबह जो हुआ उसके बाद रूपाली जी का कहीं जाने का मन तो नहीं था, पर उनकी बहन की बेटी की शादी थी इसलिए उन्हें जाना ही पड़ा, और उनके जाते ही घर में शांति छा गई।